ओम शांति, ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026 है और आज का दिन बहुत विशेष भी है, क्योंकि आज के ही दिन 43 वर्ष पूर्व 1983 में हमारी अति प्यारी अति स्नेही सबकी दुलारी बड़ी दीदी, जिनको मनमोहिनी दीदी कहते हैं, उन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग किया था। आज उनकी स्मृतियां हम साकार कर रहे हैं। वैसे तो कल रात को उसकी वीडियो फिल्म भी दिखाई थी और आज रात को भी दीदी की शिक्षाएं, उसकी भी वीडियो फिल्म आपको दिखाएंगे। तो दीदी और दादी, ये दो हंसों का जोड़ा थे। दो हंसों का जोड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा। बाबा मम्मा तो अलौकिक मात पिता थे, लेकिन दीदी और दादी ने अलौकिक मात पिता को पूरा पूरा फॉलो किया और बाप दादा ने उनको आगे सेवाओं के लिए मुकरर किया। बाबा ने यही कहा कि अब दीदी और दादी फ्रंट में रहेंगे और माता पिता वो बैकबोन होंगे। जैसे सूर्य और चांद उज्जल हो जाते हैं तो सितारे आकाश में चमकते हैं, तो ये माता पिता तो सूर्य चंद्रमा की तरह थे, अब आकाश में सितारे चमकेंगे और उसमें भी दीदी दादी को बाबा ने आगे रखा। कैसे बाबा ने, वैसे बाबा कहते बहनों को आगे रखा, लेकिन दीदी दादी को निमित्त बनाया। और हमें, हम अनुभव करते हैं कि दीदी दादी के निमित्त बनने से इस संस्था की तो दिन दुगनी रात चौगनी गति से इतनी वृद्धि हुई जो बात मत पूछो। साकार बाबा मम्मा तो गुप्त ही रहे, लेकिन दीदी दादी ने कैसे सारे विश्व में सेवा की, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही विदेशों में भी सेवाएं शुरू हुई। दीदी भी कई देशों में गई थी, दादी जी तो गए ही थे, लेकिन दीदी जी भी कई विदेश के सेंटरों पर गए थे, देशों में गए थे। फिर तो दादी जानकी ने कैसे सारे विश्व में सेवा की, तो वो तो बड़ा इतिहास है। लेकिन आज हम विशेष दीदी और दादी को याद करते हैं, हमारी दीदी और ये दादी। तो दोनों का अर्थ तो बड़ी बहन ही है। सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं और बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो दादा ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज कहते थे और बड़ी बहन को हिंदी में दीदी कहते हैं। तो दीदी और दादी ये कैसे इंजन बन करके सारे यज्ञ को चलाया। तो आज विशेष दीदी का दिन है और बहुत जल्दी दादी जी का भी अव्यक्ति दिवस आएगा। 25 अगस्त को दादी जी का दिवस है। तो अब हम बाबा की मुरली सुनते हैं। आज 28/7/2026 है। आज का जो गीत है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत पुराना गीत है। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, ये आज का गीत है। बाबा हमारी तकदीर जगाने आए हैं। कितनी ऊंची तकदीर बाबा ने हमारी बनाई है। परसों भी बाबा ने कितनी महिमा की है हमारे भाग्य की। तो इतनी ऊंची तकदीर हम बना रहे हैं तो कहीं ऐसी गफलत न हो जो वो तकदीर बनते बनते कहीं बिगड़ न जाए। तो अपने ऊपर बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो वही आज का गीत भी है। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? भट्ठी चल रही है ना, आज से भट्ठी शुरू हो रही है। विशाखापट्टनम के भाई बहने आए, भाई बहने विशाखापट्टनम के हाथ उठाए, थोड़े आए, अच्छा आए हैं साइड में। ट्रांसलेशन मिल रहा है? ट्रांसलेशन है? तेलुगु चाहिए तो बाद में आप बात करना। तो विशाखापट्टनम के भाई बहने आए हैं और साथ में जालोर भी है, अमरेली है। तो आज शाम से भट्ठी शुरू हो रही है पांडव भवन में। तो तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? अब ये कायदा होना चाहिए, कायदा है हमारी भट्ठी का कौन सा? उत्तर, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। भट्ठी माना पूरी एकाग्रता, यहाँ वहाँ इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो क्या होगा? अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे या तो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, क्योंकि बुद्धि भटकती है तो सिर भी भटकता है, यहाँ वहाँ देखते रहेंगे या तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे क्या होता है? इससे वायुमंडल खराब होता है, क्योंकि एक अगर झुटका खाता है तो दूसरा उसके जो पास बैठा होगा उसको भी वाइब्रेशंस आएंगे और वो भी झुटका खाना शुरू कर देगा, फिर दूसरे के आगे तीसरा होगा फिर वो भी झुटका खाना शुरू करेगा, तो वो योग भट्ठी थोड़ी हुई। तो बाबा कहते हैं रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। एक कारण बना और उसके कारण फिर वातावरण ऐसे बन जाता है तो कितना बड़ा उसके ऊपर बोझ चढ़ता है। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, बनते नसीबा फूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के दो अक्षर सुने, बच्चों को सावधानी मिलती है इस समय। हाँ, ये एक सावधानी है ना, बनता जो नसीब है हमारा, कहीं ये फूट न जाए, ध्यान देना है। तो बच्चों को सावधानी मिलती है इस समय, जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, दुनिया वालों की तो सचमुच तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। हमारी तकदीर तो संवर रही है, बन रही है, और दुनिया वालों की तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। हाँ, तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। हाँ, बिगड़ नहीं रही है, सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। अब तकदीर बनानी है तो पहले तो बाबा को याद करना है, और सबसे पहले क्या कहना है बाबा को, बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा अक्षर ही बड़ा मीठा है, बाबा अक्षर ही बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। हाँ, मना बेटों को मिलता है, बच्ची को नहीं, आजकल तो बेची बच्चियों को भी मिलता है। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है, एक भगवान के बच्चे हैं। परंतु हाँ, एक तरफ कहते हैं दुनिया में भी हम सब भगवान के बच्चे हैं, अब एक भगवान के बच्चे हैं फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? एक पिता के बच्चे तो लड़ने झगड़ने नहीं चाहिए। सब आपस में लड़ते ही रहते हैं, अनेक धर्म अनेक मत हैं, और मुख्य बात तो क्या, मुख्य बात है अनेक मत है अनेक धर्म है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है। रावण राज्य माना ही लड़ाई झगड़े, लड़ाई ही चलती है। क्योंकि क्यों लड़ाई चलती है, घर घर में लड़ाई, देश में लड़ाई, देशों के बीच में लड़ाई, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है जिसके कारण लड़ाइयां चलती रहती है। क्योंकि विकारों की प्रवेशता है, काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है काम विकार के कारण, काम के लिए बहुत लड़ते हैं, खास काम विकार के कारण लड़ते हैं। कितने खुश होते हैं, हाँ, क्या समझते हैं कोई इसके साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। अब किसी के साथ दिल लग गई और उसका पति है तो फिर उस पति को मार भी देते हैं, क्योंकि किसी के साथ दिल लग गई। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है, क्रोध वाले को तो क्रोध ही कहेंगे, महाशत्रु नहीं है वो, क्रोध करने वाले को क्रोध ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। काम विकार एक विष के समान है, जहर है। तो बाबा कहते हैं, गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है, दिखाते हैं अमृत का कहां वर्णन आता है, दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, फिर कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां बैठ बनाई है, इसमें भी बड़े से बड़ी बात है जो शास्त्रों की गड़बड़ हो गई है, बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की और गीता का भगवान की, ये दो बड़ी बातें हैं भगवान के बारे में, गीता का भगवान और परमात्मा सर्वव्यापी है, जिससे बहुत गड़बड़ी हो गई है। गीता का भगवान कौन और फिर पतित पावन कौन, प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदियां व सागर। कौन है पतित पावन? पतित पावन कौन है? ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं या पानी की नदियां व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। प्रदर्शनी में ऐसे प्रश्नावली बना के रखते थे, फिर लोगों से पूछते थे, आप बताइए कि कौन है पतित पावन। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया। क्या समझाते हैं बाप? तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वो पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसा बना हुआ है कोई भी नहीं जानते। इस खेल को कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, तो गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझने में आता है बरोबर, रावण हमारी बिगाड़ते हैं और राम आकर के सुधारते हैं। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, हार और जीत का खेल। रावण बिगाड़ते हैं और राम सुधारते हैं। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन भारत का रावण। ये भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो, भारतवासियों से पूछो, कब से जलाते आए हो, तो कह देते हैं अनादि जलाता है। जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से रावण को जलाते आते हैं। अब शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते रहते हैं, तो मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये भी कहते हैं कि ये किसकी भूल है, किसकी भूल है बाबा, कि ये नहीं कहते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में नूंद है कि ये भूल होनी ही है। हार जीत का खेल है ना, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। तो माया से कैसे हार खाते हैं ये भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। पूरा 2500 वर्ष रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश, तो अपने समय पर एक्यूरेट चलता है, वो भी एक्यूरेट है, स्थापना और विनाश। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वो तो बौद्ध धर्म का खंड है। श्रीलंका वहाँ तो बौद्ध धर्म का खंड है ना, तो बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां हैं श्रीलंका में। एक तो इतनी बड़ी मूर्ति है, बात मत पूछो, लंबी मूर्ति, बहुत लंबी मूर्ति है, लेटी हुई बुद्ध की मूर्ति। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो लंका होती नहीं, वो तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है कौन सा देश कहाँ है, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है, उनको नक्शे का पता होता है, ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो पता है लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, इसको ज्ञान का नेत्र कहा जाता है, तीसरा नेत्र। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके तो बाबा इन्हों के लिए एक ही बात कहते हैं, बूढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा समझ नहीं सकते ना, तो एक ही बात कहते हैं, इन्हों को एक ही मुख्य धारणा करनी है बूढ़ियों को, जो ही अंत में काम आती है, क्योंकि अंत में ये सारा ज्ञान काम में नहीं आएगा, अंत में केवल एक ही बात काम आएगी। कौन सी बात काम आएगी? एक बाबा की याद। इसलिए बाबा कहते बूढ़ियों को बस यही बताओ, एक बाप की याद। तो बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं, राम राम का, हाँ राम राम कहो, है ना। कोई शरीर छोड़ने पर आता है उसको यही कहते हैं ना, राम राम कहो, और जब अर्थी को ले जाते तभी भी कहते राम राम, संग है ना, तो वो ईश्वरीय का ही एक संग है, बाकी सब किसी का नहीं। तो बाबा कहते हैं अंत में यही काम आता है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं पर पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं, राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते हैं शास्त्र सुनाओ वेद सुनाओ, नहीं, भगवान को याद करो राम राम कहो। पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं अंत में भी वही याद आता है। जितना समय ज्यादा चिंतन किसी बात में रहे अंत में वही याद आता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे, हा? अंत में सब किसको याद करेंगे? कोई श्री कृष्ण को याद करेंगे, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे, अंत में हाँ किस किस को याद करेंगे? देह को याद किया, बाबा कहते खेल खलास। एक बाप को याद किया तो खेल आबाद, और को सबको याद किया खेल खलास अंत में। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो, चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं, जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। पावन कैसे होंगे? जितना याद करेंगे उतना पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। तो बाप ने समझाया है आत्मा क्या है, एक स्टार बिंदी, स्टार बिंदी यहाँ लगाते हैं ना मस्तक पर, भ्रकुटी में स्टार लगाते हैं कई बार, तो स्टार बिंदी भ्रकुटी के बीच में चमकती रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म सितारा है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ क्या लिख दिया, युगे युगे, कल्प के संगम युगे आता हूँ। तो उन्होंने वो कल्प का संगम युग छोड़कर युगे युगे अक्षर डाल दिया है। तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है, हाँ शिव बाबा अपनी बात कहते हैं, मैंने कहा है कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, दो कल्पों के बीच का जो संगम है उसमें आता हूँ। तो घोर अंधियारा और घोर सोझरे का संगम मैं कब आता हूँ, जब एक तरफ घोर अंधियारा और दूसरे तरफ घोर सोझरा, उसके संगम पर आता हूँ। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं है, सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं पहले बहुत कहते थे सन्यासी लोग, जब हमारे चित्रों को देखते थे ना तो कहते थे ये तो सब इनकी कल्पनाएं, ऐसे कहते थे। खास करके आर्य समाजी, वो तो बहुत बिगड़ते थे, कहते थे ये सब इनकी कल्पनाएं। परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ये सब को समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। ये चित्रों द्वारा सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। अभी तो है, जहाँ भी बाबा के सेंटर्स हैं वहाँ ये हमारे चित्र हैं। लेकिन भले वो अपने ढंग से बनाते हैं, लेकिन यही चित्र त्रिमूर्ति गोला झाड़ सीढ़ी भी बनाते और भी कई चित्र बनाते हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। तो बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, भगवान के तो सब बच्चे हैं। अनेक धर्मों का ये झाड़ है, कल्प वृक्ष अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सत्युग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले, सत्युग में पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापुर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं। सत्युग में भी पहले पहले आते हैं, फिर द्वापुर आते ही सबसे पहले काम अग्नि में वही जलते हैं, इसीलिए काले हो गए हैं। अभी सब की सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो सबकी, सबकी सबको घर ले जाने लिए तुम निमित्त बनते हो, सबकी सदगति करने लिए तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। तुम्हारी सदगति होती है ज्ञान से, फिर तुम्हारी पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा में ही दुर्गति को पाया है, आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी ऐसा ही मिलता है, जैसी आत्मा वैसा शरीर। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। क्या सहज युक्ति है आत्मा को पावन बनाने की युक्ति, कौन सी सहज है? मुझे याद करो। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं, हाय हाय विरोध करते ना, इनको आप ब्रह्मा क्यों कहते हो? वो तो समझते हैं ब्रह्मा तो देवता है, ये थोड़ी है, इनको क्यों ब्रह्मा कहते हो? और हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, दाढ़ी मूछ वाला देवता होता है क्या? तो ब्रह्मा को तो दाढ़ी दिखाते हैं, तो वो तो मनुष्य रूप में है। तो मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, ऐसे मानते हैं, यहाँ कहाँ से आया? क्योंकि ब्रह्मा को तो कैसे बादलों के बीच में दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को, तो समझते वो तो सूक्ष्म वतनवासी है, यहाँ कैसे आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था। अब ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते हैं ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। अब इतना नामी ग्रामी था, इतना बड़ा जौहरी था और इतना उनका नाम था, बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो कैसे नाम बदनाम हुआ? तो बाबा कहते अखबारों में सब जगह पढ़ा था कि एक जौहरी है जो कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ। अब ब्रह्मा बाबा ने तो कभी नहीं कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, ब्रह्मा बाबा से बच्चों को साक्षात्कार होता था श्री कृष्ण का। अब वो लीला तो शिव बाबा की थी और लोग समझते थे कि इसके पास जादू है, ये अपने आप को कृष्ण कहलाता है। तो बाबा कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। उस समय 400 जो बाबा के बच्चे बाबा के पास सरेंडर थे, तो उनके लिए वो लोग क्या कहते थे कि ये इनकी रानियां हैं, ये इनकी रानियां। वो कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ और ये मेरी रानियां हैं, मुझे तो 16108 रानियां चाहिए। तो बाबा कहते कितनी कलंक लगाई, हमको 16108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था, भगाने का भी हंगामा, क्योंकि वो भाग कर आई थी ना। बाबा कराची चले गए तो जो हैदराबाद में थी बहनें, उन्होंने देखा अरे बाबा तो कराची चले गए। तो रात को इन्होंने कैसे अपना प्लान बनाया, रात को 12 बजे ट्रेन जाती थी हैदराबाद से कराची, सवेरे 4 बजे पहुंचती थी। तो सब अपने घर से निकल आए के करके बहुत युक्ति से, और ट्रेन पकड़ के 4 बजे सुबह कराची पहुंच गए बाबा के पास, भाग आई। तो देखो ये बहुत बड़ा नाम बदनाम हो गया कि ये भगाता है। तो बाबा कहते हैं बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का, अब एक एक से माथा कौन मारे, क्योंकि ये न्यूज़ फैल गई ना, अब एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वो तो जादू कर देती है। ये सब पहले बहुत होता था, अभी तो सब बदलता जा रहा। अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो वो तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा ही खराब कर देते हैं। तो बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हो, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी अर्थात, ये इंग्लिश शब्द है वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, वह हिंदी में क्या कहेंगे सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्वशक्तिमान सब वेदों शास्त्रों को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं ना, क्योंकि वो सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल लेकर आते हैं। महाउपाध्याय श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिल जाता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, राजा जनक के लिए लिखा हुआ है, इसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनावे। राजा जनक ने ऐलान किया कि मुझे कोई सच्चा ब्रह्म ज्ञान सुनावे एक सेकंड में मुझे जीवन मुक्ति दिलाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, कौन सा ज्ञान है, शिव बाबा का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा, कोई ब्रह्म तत्व का ज्ञान की तो बात ही नहीं है। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है, कहानी तो बड़ी बना दी है, शंकर को शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में क्या है, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई अमर कथा, वास्तव में था शिव, शंकर नहीं, शिव ने अमर कथा सुनाई। तो शिव उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं, है ना, बहुत विद्वानों ने राजा जनक को ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन कोई में भी राजा जनक सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो आखिर अष्टावक्र आया, उसने कहा मैं जाकर के ये ज्ञान दूंगा। और जैसे वो सभा में आया अष्टावक्र, सारे विद्वान जो बैठे थे वो हंसने लगे कि ये क्या अष्टावक्र, 8 कुब थे उसके शरीर में, कैसे चल रहा था, कहा ये क्या ज्ञान देगा राजा जनक को। तो उसने क्या कहा, ये सब राजन ये सब चमार बैठे हैं, टाइटल मिल गया उन विद्वानों को चमार, क्योंकि उनके शरीर को देख रहे थे, तो इसीलिए उसको लगा मैं जाकर राजा जनक को ज्ञान दूं। तो बाबा कहते हैं राजा को ये ज्ञान जाकर मैं दूं, बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो, है अभी की बात, हाँ राजाओं को जाकर ज्ञान दो। और बाबा ने कहा था हर एक मुरली में, कई मुरलियों में, कि अंत के समय जब राजाओं को ज्ञान मिले और सन्यासियों को ज्ञान मिले और वो झुके, तब समझो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी देखते ना कितने सेंटरों पर, अभी तो राजा ही रही नहीं, लेकिन आते हैं, वो आती है, आते हैं ज्ञान में, जो इनके पूर्वज तो राजा थे, तो वो राज घराने के भाई बहन आते हैं ज्ञान में, साधु सन्यासी भी देखो कितने आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। उन राजाओं को समझाओ तुम ही सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी चट हो गई है, अभी तो कोई राजा ही रही नहीं ना। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो, उन राजाओं को कहो कि फिर से सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो, राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, क्योंकि राजयोग से ही तुम फिर से राजाओं का राजा बनोगे। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो, राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। अब प्रधानमंत्री के पास भी राजा, पहले राजाओं के पास चिट्ठियां जाती थी, लेकिन सब थोड़ी राजा को देते थे, वो उनके सेक्रेटरी का बेकार पत्र है तो फाड़ के फेंक भी देते थे। तो राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। इनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं, कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं, कहते हैं अभी अष्टावक्र की बात, अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। सेकंड में वो घोड़े पर चढ़ रहा था, एक पांव घोड़े पर था, एक पैर उनका धरती पर था, तो बस राजा ने से एक ही प्रश्न किया अष्टावक्र ने, तो आप कहाँ हो, घोड़े पर हो या धरती पर हो? तो वास्तव में एक पांव घोड़े पर था, उसके जो सैडल है जहाँ पांव रखते हैं, और एक पांव उनका धरती पर था, अभी चढ़ रहा था, तो कहाँ हो? तो उसको तो समझ में नहीं आया क्या कहूँ, घोड़े पर हूँ या धरती पर हूँ? तो कहा बस यही जीवन मुक्ति है, घोड़े पर भी है और धरती पर भी है और नहीं है, बस ये एक वाक्य है और नहीं है, इस संसार में है जिस पर संसार में नहीं है, ये है जीवन मुक्ति एक सेकंड में। तो ऐसे ही है, बाबा कहते हैं है और नहीं है, इस संसार में है और नहीं है। तो बाबा के फिर उनको साक्षात्कार कराया जीवन मुक्ति का, कि इस संसार में है लेकिन न्यारे है। अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया, वो भी अब की बात है। अब बाप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं, जो समझने वाले नहीं हैं, वो तो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, मुरली सुनते भी रहेंगे, यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, समझेंगे नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है, बाबा चारों तरफ देखते भी हैं। अब हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाते थे तो सब तरफ बाबा की बुद्धि तो जाती थी ना, तो बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है, हाँ भटकती रहती है कहीं, उबासी देते रहते हैं, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके भी खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था, हाँ तुम तो झुटका खा रहे हो, बाहर बैठ जाओ, तो तो झुटका खाता था तो बाहर निकाला जाता था, अपने ही बैठते थे, बाहर का तो कोई आता ही नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला है, हमारी दादियों का बहुत बड़ा पाठ चला है, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है, अभी तक भी कहते रहते हैं ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, इनकी आंखों में नहीं देखना, इनका प्रसाद नहीं खाना, जादू लग जाएगा, अभी भी कहते रहते जादू है। परम पिता परमात्मा को तो जादूगर कहते हैं ना, हाँ बरोबर, ये ज्ञान का जादू है, पवित्रता का जादू है। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं, बाबा से बहुत प्यार है, बाबा से दृष्टि लेते हैं और बाबा उनको दृष्टि देते थे और वो झट ध्यान में चले जाते थे, झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, वहां तो वैकुंठ का बहुत साक्षात्कार करती थी बहनें, तो वैसे भी भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, अभी ये तो है ही नर्क, सब नर्कवासी हैं, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो कि हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नर्कवासी बन गए हैं, अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में तो बहुत पद है, कोई राजधानी होती है उसमें कितने पद होते हैं, पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, फॉलो मदर फादर, फॉलो मदर फादर, अभी कहेंगे फॉलो मदर फादर, फिर फॉलो दीदी दादी, हाँ तो फॉलो मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, यही बुद्धि में घुमाते रहो, औरों को समझाते रहो, इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा और कोई याद नहीं पड़ेगा, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। बहुत बड़ा काम मिला, फॉलो करना है मात पिता को और उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरा, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देव देधारियों को याद नहीं करना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, देह और देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर, हमारी हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है? हमारा अनादि स्वरूप, हमारा आदि स्वरूप, ये हमारी हाईएस्ट पोजीशन है। तो अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसको कहेंगे? संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में, कोई भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। 1% भी नहीं, हाँ, कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प ही नहीं कर सकती है। कोई विकारी ख्यालात तो क्या साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती है। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो, है ना। वैसे भी किसका नाम बहुत ऊंचा है और अचानक कोई ऐसा बुरा काम करे तो वो नाम ऊंचा और काम बुरा, तो काम नीचा, तो कितना बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करते करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। यह व्यक्ति इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इस कलयुगी तमोप्रधान जर्जरी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए, क्या बन गया ये कल्प वृक्ष? कलयुगी तमोप्रधान जर्जरी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है। ऐसी दुर्दशा हो गई है तो ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे। ये ब्रह्मा बाबा को ख्याल आता है कि कैसे बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे। परंतु अकेले तो नहीं करेंगे ना, परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। फुल फोर्स से संगठित रूप में योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज हमारी प्यारी प्यारी दीदी मनमोहिनी जी का आवृत्ति दोष है, और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिन भाई बहनों ने दीदी को देखा वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने देखा बहुत थोड़े ही हैं। अच्छा, एक है देखना, एक है पालना लेना, जिन्होंने दीदी की पालना ली वो हाथ खड़ा करें, वो भी बहुत थोड़े हैं। अच्छा, दीदी तो यज्ञ की बाबा मम्मा के साथ दीदी दादी प्रकाशमणि, बाकी दादियां भी साथ में फाउंडेशन रही, और हमारी प्यारी दीदी बाबा के हर डायरेक्शन को हर श्रीमत को जैसे मम्मा पूरी तरह से फॉलो करती थी, ऐसे दीदी भी बाबा के हर श्रीमत को पूरा ही पालन करती थी। दीदी बहुत ही मर्यादाओं से संपन्न, और दीदी हमेशा चाहती थी कि बाबा का बच्चा ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा है उसको अच्छी तरह से पालन करे, और दीदी ध्यान भी देती थी और बहुत एक्यूरेट थी, और हर बात के अंदर उनको एक्यूरेसी बहुत अच्छी लगती थी। थोड़ा सा भी एक्यूरेसी नहीं होती थी तो दीदी को लगता था ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दीदी के लिए कहते बहुत स्ट्रिक्ट थी। लेकिन हमने जो अनुभव किया कि स्ट्रिक्ट उनको लगती थी जो श्रीमत का पालन नहीं करते थे, जो श्रीमत का पालन करते, बाबा ने जो नियम बताए उसका पालन करते और अच्छी तरह से धारण करते, तो दीदी उनके लिए स्ट्रिक्ट नहीं थी। और दीदी अपने जीवन के अंदर बहुत लाइट रहती थी, बहुत हंसती थी, हंसाती थी, खेल करती थी, मजाक करती थी, और सबको अच्छी तरह से लाइट भी रखती, और शाम के टाइम पर वो पूरा सबका चार्ट भी लेती थी कि आपने आज सारे दिन में क्या किया। तो दीदी कभी कभी क्या करती थी, आंगन में खड़ी हो जाती थी, कहती थी अभी क्लास की दूसरी एक तो बेल बजती थी, जब मुरली क्लास है या शाम की रात की क्लास है उसके लिए बेल बजती थी, क्लास में जाने से पहले दीदी आंगन में खड़ी हो जाती थी और दीदी कहती थी बेल बज गई है, सेकंड बेल बज गई है, सब क्लास में चलो, और क्लास में जाकर के वो पहला नंबर जाती थी। और दीदी बहुत एक्यूरेट क्लास और रात के टाइम पर जो भी सेवा समाचार आते थे, दीदी कहती थी कि उस समय तो कोई ऐसे साधन नहीं थे, मोबाइल में पढ़ते रहो देखते रहो, उस समय पत्र पढ़ के सुनाए जाते थे, और दीदी खुद भी सुनती थी और सबको कहती थी ध्यान से सुनो। और दूसरी बात, दीदी ने आजकल जो मुरली में प्रश्न उत्तर आते हैं, दीदी ने मुरली कभी नहीं सुनाई, लेकिन दीदी मुरली से प्रश्न निकालने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो उस समय मुरली पूरा होती थी तो मुरली के बाद दीदी सबसे पूछते थे आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, तब से लेकर के फिर दीदी ने राजू भाई को सिखाया कि मुरली से कैसे प्रश्न निकालने, तब से लेकर के हर मुरली के अंदर आप देखेंगे प्रश्न आता है, पहले मुरली का सार आता है फिर प्रश्न आता है, ये सब दीदी ने ही शुरू किया था ताकि बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ सके। अच्छा, जिन्होंने दीदी की आवाज नहीं सुनी वो हाथ खड़ा करें। दीदी भाषण करने में बहुत एक्सपर्ट, क्लास कराने में भी बहुत एक्सपर्ट, दीदी की आवाज ऐसी इतनी प्यारी सी आवाज है, दो लाइनें सुनाना, बहुत प्यारी सी आवाज है, वो भी हम सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, दीदी को और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। अच्छा, जो भाई बहने शांतिवन से हाथ खड़ा करें। अच्छा, शांतिवन से आए हुए भाई बहनों को हम एक बात बता रहे हैं कि सभी का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन जो है वो ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे बैठने की जगह नहीं है, बरसात भी है, तो नीचे किसी को भी डाइनिंग हॉल में नाश्ता नहीं करना है। अगर कोई चढ़ भी नहीं सकते हैं तो लिफ्ट भी है, तो लिफ्ट से ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन वहाँ ऊपर बड़े डाइनिंग हॉल में करें। अच्छा, जो भट्टी वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। अभी थोड़े पहुंचे, काफी सारे नीचे भी हैं, आइए बाकी। तो आज भट्टी का शुभारंभ शाम को 5 बजे मेडिटेशन हॉल में तिलक विधि के द्वारा होगा, फिर बाकी के डायरेक्शंस वहां पर भट्टी में ही बताए जाएंगे। अच्छा, दीदी की आवाज चला ना।
ओम शांति। देखो, ओम शांति का महामंत्र बोलिए हमको, प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं, तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, तुम्हें स्वधर्म की सीट पकड़ लो, तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। बोलो वो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसी समझ रही है, तो आज तो जैसे हम चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं, सामने हरियाली दिख बड़ी दिल खुश होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है, तो ऐसे नहीं सिर्फ बोल बोलते हैं, परंतु ऐसी महसूसता आ रही है जैसे प्यारे बाप दादा के से डायरेक्ट दिव्य जन्म ले, दिव्य गुण धारण करके अब दिव्य कर्तव्य पर उपस्थित। बाबा कहे पहले पहले सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करके, और जब जो टाइम अपॉइंटमेंट मिला है उस सब टाइम पर ही बच्चे जिस समय भी बैठते हैं, उस समय जैसे शरीर से डिटैच होकर के और पूरा कनेक्शन बाबा के साथ, बस पूरा संबंध भी जुट जाता है ऑटोमेटिक।
दीदी हर बात को धीरे प्यार से और बहुत ही स्पष्ट करके सबको सुनाती थी। अभी भी हमने कुछ ही लाइनों में सुना कैसे दीदी प्यार से, दीदी ने ओम शांति का मंत्र तो पक्का किया हुआ था, लास्ट में दीदी का एक स्लोगन रहा कि अब घर जाना है, और दीदी हमेशा लास्ट में कहती थी अब समय है, अब घर जाना है और तैयारी करनी है, अपने आप को परिपूर्ण करना है। ये दीदी ने करके दिखाया और सबको ऐसा करने के लिए प्रेरणा भी दी। और अभी हम चलते हैं प्यारे बाबा के पास, दीदी को, बाबा को, सबको भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। ओम शांति।
बच्चे रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
ओम शांति। आज विशेष हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी के निमित्त भोग के साथ सबकी याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन थी और उस डेकोरेशन में कहीं पर लाइट के म्यूजिक आवाज सुनाई दे रही थी, कहीं पर ऐसे चमचमाते सुंदर सितारे दिखाई दे रहे थे और कहीं पर लाइट की लड़ियां लगी हुई और वो लाइट बहुत सुंदर से दिखाई दे रही थी। लेकिन एक साइड में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर सा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल और उन फूलों के बीच में कुछ न कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन वतन के पूरे डेकोरेशन से वो पेड़ जो है और पेड़ की पत्तियां फूल वो सबसे ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे थे, तो बार बार मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा आए, बाबा ने कहा आओ बच्चे। मैंने कहा बाबा आज वतन की डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पेड़ है इसके पत्तियां और फूल वो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बाबा ने कहा ये वतन की डेकोरेशन जो है बच्चों का प्यार, मन की भावनाएं, दीदी के प्रति जो आदर सत्कार है वह भावनाओं की डेकोरेशन है। तो मैंने कहा बाबा दीदी कहाँ है और ये पेड़ इतना सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उस पेड़ को जैसे मैं देख रही हूँ, बाबा ने कहा दीदी ने अपने ब्राह्मण जीवन के अंदर हर मर्यादा का जिस तरह से पालन और उसको अंदर धारण किया है वो स्वरूप वो मर्यादाएं इस पेड़ के पत्तियां और फूलों पर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं कहती बाबा दीदी कहाँ है, बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उस पेड़ के पीछे एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प था और जैसे मैं दीदी कहती हूँ तो कमल का पुष्प धीरे धीरे उठ करके वो पेड़ के ऊपर की ओर पहुंच जाता है। पेड़ आगे है, उसके पीछे कमल का पुष्प, और कमल पुष्प में दीदी खड़ी हुई दिखाई दिया और वो जो पेड़ के फूल थे वो धीरे धीरे घूमते हुए दीदी के गले में माला के रूप में पड़ गए और दीदी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा बच्ची ने, बच्ची का जैसा नाम था, दीदी का नाम पहले गोपी था, बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने गोपिका का पार्ट भी एक्यूरेट बजाया और ब्राह्मण जीवन के यज्ञ की मर्यादाओं का भी एक्यूरेट पालन किया, तो आज ये जो फूल है वो सब मर्यादाओं के ऐसे चमचमाते हुए रोशनी से दीदी का श्रृंगार कर रहे थे। तो दीदी बाबा को देख के मुस्कुरा रही थी। दीदी ने कहा बाबा ने सिखाया, बाबा ने कराया, हमको तो खुशी होती थी कि बाबा जो कहते थे उसके करने में इतने अच्छे अनुभव होते थे जैसे कि और लाइट और अपने को बहुत भरपूर अनुभव करते थे। तो मैंने कहा बाबा, और दीदी को कहा आज आपने क्या किया। बाबा कहते दीदी से पूछो, दीदी कहती बाबा से पूछो। तो फिर बाबा ने कहा आज अमृत वेले से बाबा दीदी को सभी बच्चों के पास, जितने भी सेंटर हैं सभी बच्चों के पास लेकर के गए और विश्व की जो भी अनेक महाहस्तियां हैं उनका भी अवलोकन कराया। तो दीदी से पूछो क्या अनुभव रहा। तो दीदी मुस्कुराते हुए बाबा को भी देख रही थी। दीदी ने कहा कि सब बच्चों को देख करके एक तरफ बहुत खुशी कि बाबा को पहचाना, बाबा से अत्यंत स्नेह और बाबा से अपना अधिकार लेने में सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर दूसरी बात कहते कहते दीदी मुस्कुराने लगे। दीदी ने कहा कि बच्चे जानते भी हैं समय कैसे अपना खेल कर रहा है और सब बच्चे अपने आप को संपन्न बनाने में अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कहते हुए दीदी मुस्कुराने लगी। कहा इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन हर बच्चे ने कोई ना कोई प्रकार के बंधन के तारों में अपने आप को बांधा है। कोई पुरुषार्थ के तारों में अपने को बांध रहा है, कोई सेवा के बंधन में बांध रहा है, कोई सूक्ष्म ऐसे संकल्पों से अपने आप को बांध रहा है, कोई संकल्पों के द्वारा सोच सोच करके ऐसे सूक्ष्म तारों में अपने को बांधा हुआ है। तो ऐसा सीन दिखाया, कई तो एक बंधन में एक वायर में बंधे हुए हैं, कईयों को दो वायर थी, कईयों को तीन चार वायर दिखाई दे रही थी, लेकिन वायर इतनी पतली थी। तो दीदी ने कहा ये जो सूक्ष्म बंधन है वो इतने सूक्ष्म है, देखने में नहीं आते हैं परंतु सूक्ष्म रीति से एक बंधन छोड़ते हैं तो दूसरे बंधन में अपने को बांध लेते हैं। दीदी ने कहा कि जैसे बाबा बार बार याद दिलाते हैं अचानक कुछ भी होगा, लेकिन बच्चे अभी भी अचानक के बारे सोचते हैं, तो अचानक से पहले अपने को संपन्न बनाने का लक्ष्य रखें और ये जो संकल्पों के सूक्ष्म तारे हैं या बंधन क्रिएट किए हुए हैं है नहीं, स्वयं सोचने के ही बंधन है, इन बंधनों से मुक्त करते जाएं। फिर दीदी ने कहा जो विश्व की महान हस्तियां हैं उनका जब देखने गए तो दीदी कहती मैं अकेली नहीं गई, मेरे साथ एडवांस पार्टी वाले भी सब गए थे, उन महान हस्तियों को देखा कि वो परिवर्तन के कार्य में इतना व्यस्त हैं, वो सोचते हैं जल्दी से जल्दी एक ऐसा नया विश्व हो जिसके अंदर इतनी खूबसूरती हो और इतना सुख हो, शांति हो, उसकी वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, उसके सूक्ष्म अंदर से उनकी सूक्ष्म तैयारी भी चल रही है, वो सब कुछ आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपने जो सूक्ष्म बंधन के तारे हैं उनको काटना है, सिर्फ लक्ष्य रखना है। अभी समय परिवर्तित हो रहा है, हमको अपने घर और अपनी राजधानी में जाना है, उसके लिए अपने को तैयार करना है। फिर तो जैसे मुस्कुरा रहे थे, बाबा ने क्या किया उस समय सभी एडवांस पार्टी वालों को इमर्ज किया और बाबा तो पीछे छिप गए, तो दीदी एडवांस पार्टी वाले मम्मा दादी अन्य सब दादियां और दादाएं थी, उनसे बात ही ऐसे धीरे धीरे बात कर रही थी। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, कहा कि हमारी सूक्ष्म मशीनरी बहुत तेज चल रही है, लेकिन ब्राह्मणों की जो संपन्न होने की मशीनरी है उसमें थोड़ा सा ढीलापन है, इसलिए अपने को संपन्न बनाने की मशीनरी को थोड़ा तेज करें। उसके लिए एडवांस पार्टी वाले बीच बीच में ब्राह्मणों के चेकिंग भी करते हैं, उनको शक्ति भी देते हैं। फिर बाबा ने सामने आए और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे, बाबा ने कहा जैसे दीदी ने एडवांस पार्टी ने कहा है कि बच्चों को अपने अंदर की सूक्ष्म मशीनरी को फास्ट करना है ताकि अपनी नई दुनिया का कार्य जल्दी हो सके। फिर तो बाबा ने और भी भाई बहनों को इमर्ज किया और दीदी उनको देख करके बहुत मुस्कुरा रही थी, सबको बहुत खुशी के डांस करा रही थी। फिर मैंने कहा दीदी आपके लिए सब ने प्यार से भोग भेजा है, तो दीदी ने भोग को देखा तो दीदी बाबा को खिलाने लगे। बाबा ने कहा नहीं, पहले दीदी को खिलाओ। बाबा ने दीदी को खिलाया, दीदी ने बाबा को, एडवांस पार्टी को, फिर सब ब्राह्मणों को भोग खिलाया। ऐसे किया, सबके मुख में पहुंचा और सबके पास एक बहुत सुंदर सा फूल पहुंचा। उस फूल के अंदर लिखा हुआ था समय परिवर्तित होने जा रहा है, समय से पहले अपने को संपन्न बनाएं और बातों से अपने को डिटैच, न्यारा और प्यारा बने, जो ऐसे लिखा हुआ था। जो सबके पास पहुंचा उस समय तो फूल मिलते ही सबके सब फरिश्ते जैसे बन गए। दीदी कहती है बस फरिश्ता बनने का भी अनुभव करते रहे। फिर सबको याद दिया, कहा बाबा ने बाबा की रचना को देख करके मुझे भी बहुत खुशी होती है और इन बच्चों को देख करके भी कितने भाग्यशाली हैं, सारे विश्व के अंदर इतने भाग्यशाली हैं, ऐसे बच्चों को देख करके हमें भी खुशी है, लेकिन अपनी राजधानी के लिए जल्दी से तैयारी करनी है। सबको याद दिया। ओम शांति।